गृहस्थी में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य संवाप्याय गृह धर्म समाचरेत हिरण्य त्रय विमुक्ति अर्थं धर्मेण उत्पादेत प्रजां। ब्रह्मचर्य की अवस्था पूर्ण होने के बाद 25 वर्ष की युवावस्था में गृहस्थ धर्म को स्वीकार करे और ऋण त्रय विमुक्त अर्थम देवऋण ऋषि ऋण पितृऋण ऋण से छुटकारा पाने के हेतु धर्म की विधि से सो प्रजा निर्माण करे नाम के को प्रजा। शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने प्रकृति के नियम अनुसार ब्रह्मचर्य के नियम पहले ही बांध रखे हैं। प्रकृति के नियमों को तोड़ने से किसी का भला नहीं हो सकता। यदि उन नियमों के अनुसार चले तो मनुष्य स्त्री के रहते हुए भी ब्रह्मचारी हो सकता है। अखंड ब्रह्मचारी में और गृहस्थ ब्रह्मचारी में जब भी बहुत फर्क होता है, तब भी धर्म के नियम के अनुसार चलने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी भी महान तेजस्वी जयस्वी ओजस्वी मनस्वी अर्थात मनोनिग्रही वा समर्थ सुपन्न होता है। जिस स्थान में सच्चा ब्रह्मचारी पहुंच सकता है उसी स्थान में सच्चा गृहस्थ भी जा सकता है। परंतु आज सच्चे गृहस्थ ब्रह्मचारी भारत में कितने होंगे? बहुत ही कम। यह नितांत संकल्प है, नितांत सुबल्प है। सच्चे गृहस्थ ब्रह्मचारी के नाम होने से ही भारत गारत हो रहा है। घर घर में कुमंतान कोसंतान फैल गई है, जो 12 वर्ष की उम्र के बाद ही अपने ब्रह्मचारी का सत्यानाश करने में प्रवृत्त होती है। स्वयं माता पिता ही अपने कन्या पुत्रों के ब्रह्मचर्य के नाश का बाल विवाह द्वारा खुलम खुला यथेष्ट प्रबंध कर रहे हैं। भला ऐसे नादानों से खुद उन्हीं को नहीं तो देश की भलाई की आशा कैसे की जा सकती है? जो प्रकृति के नियमों को पैर के तले कुचलता है उसे प्रकृति भी कठोरता से कुचल डालती है। बहुत से विवाहित पुरुषों का ख्याल है कि अपनी धर्मपत्नी के साथ महीने में चाहे जब, हफ्ते में कई दिन और रात में चाहे जितने मर्तबे कितने ही काल तक विषय को करना बिल्कुल शास्त्र संगत और ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार है। इसमें कुछ भी पाप वा कर्म नहीं और ना उसमें हानि होती है। परंतु ये ख्याल अत्यंत गलत और महानाशकारी है। भाइयों, जरा प्रकृति की ओर तो देखो। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य कितना बलहीन है। पशुओं की जननेन्द्रिय सामर्थ्य कितनी अल्प वा निजमत है। इस पर से मनुष्यों को जो के घोड़ा बैल हाथी सिंह आदमकों से कम शारीरिक समर्थ रखता है, कितना ये अति अल्प वा अत्यंत निजमत विशेष सेवन करना चाहिए, इसका आप ही हिसाब लगाइए। सच कहा जाए तो मन मनना विषय सेवन करने वाला पशुओं से भी गया बीता है। ऋषियों का सिद्धांत है कि ऋता ब्रेतो स्वैदारेशु संगति संगति संगतिर त्या संग त्रया विधानता ब्रह्मचर्यं तदोक्त तदैवोक्त गृहस्थ आश्रम वासनम श्री जागवल्लभ ऋतु काल में अपनी पत्नी स्त्री से धर्म पत्नी से विधि युक्त अर्थात शास्त्राज्ञा अनुसार केवल संतान के हेतु समागम करने वाला पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। संतान अर्थ चा मैथनम यह स्पष्ट व सख्त शास्त्राज्ञा है। याद रखो श्री मनु जी महाराज कहते हैं मास में ऋतु काल में केवल दो ही रात्रि में जो धर्मशास्त्र अनुसार स्त्री सेवन करता है मैं धर्मात्मा पुरुष स्त्री रहते भी ब्रह्मचारी है। इतने इसमें का ऋतु काल यह शब्द अत्यंत महत्व का है। ऋतु काल का मतलब स्त्री के रजो दर्शन काल का चौथा ही दिन नहीं, उस दिन यदि शिवरात्रि एकादशी अथवा नवरात्रि आया हो अथवा घर में कोई मर गया हो तो क्या उस दिन काम रिपु चरित्रार्थ करना ही होगा? नहीं, कदाप नहीं। वैसा करना महा अधर्म एवं महापाप होगा। बस इससे अधिक हम यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं करना चाहते। विष भी यदि डॉक्टर की राय से खा ले तो वह भी अमृत के तुल फल देता है। जैसे ही अपनी स्त्री प्रसंग भी यदि धर्मशास्त्र अनुसार सुतिथि सोनक्षत्र का विचार कर प्रमाण में करे तो वह भी परम कल्याणकारी होता है। अप्रमाण में निसंदेह नाश है। प्रमाण से लेने पर विष भी रोगियों के लिए अमृत बन जाता है। कुछ समय पर बीज बोने वाला किसान डूब जाता है। ठीक यही न्याय अपनी स्त्री के साथ प्रसंग में समझ लीजिए। याद रखो धर्मानुकूल चलने ही से हम गृहस्थी में भी ब्रह्मचारी बन सकते हैं और घर में जैसे जैसे चाहे वैसे सूरवीर श्रेष्ठ पुत्र पुत्रियां उत्पन्न कर सकते हैं। अंथा पर दारागमन न करने पर भी मनुष्य व्यभिचारी पद को प्राप्त होता है और उसकी सब जगह से दुर्गति होती है। धर्मार्थो यह परित्यज स्यात् इंद्रिये वश अनुग्रह श्री प्राण धन दारे भयो क्षिप्रम सा परीयते। जो धर्म तत्व का परित्याग करके इंद्रिय वश हो स्वेच्छाचार अर्थात अपने मनमनी करते हैं शीघ्र ही धन प्राण स्त्री पुत्र आदि सभी नष्ट होकर उनकी महान दुर्गति होती है और जो धर्म तत्व अनुसार चलते हैं उनका देखते ही देखते सब तरह से उत्कर्ष होता है और अंत में सदगति होती है। तस् मात सर्वं प्रयत्नेन धर्मं शुक्रं चारक्षेत। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक धर्म व ब्रह्मचर्य की रक्षा कीजिए, क्यों धर्म ही जीवन है और धर्म ही मृत्यु है तथा ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। बाल व्याह प्रत्यक्ष काल व्याह ही है। जय पूर्णतया ब्रह्मचर्य का नाशक है। बाल व्याह सर्वथा धर्म विरुद्ध व अप्राकृतिक है तथा वेद शास्त्र के प्रतिकूल है। प्रकृति के निजम अनुसार ही धर्म शास्त्र में निजम है। बाल व्याह प्रकृति एव धर्म के विरुद्ध कैसे है सो सब सुन लीजिए। जो पेड़ जल्दी बढ़ते जल्दी फूलते फलते हैं जैसे केला पपीता राड इत्यादि वे जल्दी ही नष्ट भी होते हैं। वैसे वेदान धीयते वेदान धीत वेदो वेदं वापी यथा कर्म अविरप्लुत अविप्लुत विप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थ आश्रम मावशेष मावशेत सबसे श्रेष्ठ सिमृतिकार साक्षात वेद मूर्ति मनु जी कहते हैं, जब तक लड़का 3, 2 व 1 वेद पूरा न सीख ले और कम से कम 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर अपने आप को गृहस्थी चलाने के लिए पूर्ण समर्थ न बना ले, तब तक अपनी शादी कदाप न करे। यही वेद की आज्ञा है, स्त्रियों के लिए भी ऐसी आज्ञा है। इसलिए प्रमाण ब्रह्मचर्येण कन्या जवान विन्दते पत्तम नन नडवान ब्रह्मचर्येण अश्वो घासं जिगीर्षति। जो बालक बालका जल्दी जल्दी ब्याही जाती है, वे जल्दी ऋतुमयी होती है। केवल ऋतु प्राप्त होना यही स्त्री की युवावस्था का लक्षण नहीं है। दूध मुहे दांत को ईख चूसने के लायक समझना और घोर मूर्खता है। ऋतु काल का सच्चा अर्थ समझो। कम से कम गर्भा दान के समय स्त्री की आयु 16 वर्ष की होनी चाहिए और पुरुष की 25 वर्ष की। जो जल्दी बच्चे वाली होती है वे बहुत जल्द रोगग्रस्त हो मृत्यु को प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष उनकी यह हालत है, तब फिर उनके संतान की कौन कहे। बाप से बेटे सवाई जल्दी मरते हैं, तदनंतर माता पिता रोते हैं और अपने ही हाथ से अपने कन्या पुत्रों को चिता पर लटाकर फूंकते हैं और अपना काला मुंह लेकर घर वापस आते हैं। बाहरे प्रेम जो पेड़ जल्दी नहीं बढ़ते जैसे आम इमली अमरूद इत्यादि, और जल्दी फूलते फलते नहीं वे जल्दी मरते भी नहीं। वैसे ही जो बालक बालिकाएं ज्यादा उम्र में ब्याही जाती है और गर्भाधान के समय स्त्री की उम्र 16 पुरुष की उम्र 25 वर्ष की आयु होती है और जो धर्म नियमों के अनुसार चलते हैं वे निस्संदेह 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ऐसा भीष्म पितामह का सिद्धांत है, परंतु अकाल ही में माता पिता बने हुए अकाल ही में जम पुर सुधारते हैं। अधर्म अज्ञा दुराचार रास्ते भवन्ति गता जुषा। श्री भीष्म काश की अग्नि जैसे जल्दी बढ़ती है वैसे जल्दी ही बुझ जाती है और आम इमली की अग्नि जल्दी नहीं बढ़ती और इस कारण जल्दी बुझती भी नहीं। जो जल्दी बढ़ता है जो जल्दी गिरता है वही प्रकृति का निजम है। आम में जब बोर आती है तो उसमें बहुत कुछ नष्ट हो जाती है, फिर छोटे छोटे फल अंबियां लगते हैं उनमें से भी बहुत कुछ नष्ट होते हैं, फिर आंवले जैसे बड़े होते हैं उनमें से भी बहुत कुछ नष्ट होते हैं। जब वे और भी पुष्ट होते हैं तब कहीं वे आखिर तक उस पेड़ पर स्थिर रहते हैं। वैसे ही जो बालक बालिकाएं बचपन में ही ब्याहे जाते हैं उनमें से बहुत से मर जाते हैं, जिसका अनुभव आज प्रत्यक्ष हम आप कर रहे हैं। और जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन कर गृहस्थ आश्रम में विधिवत प्रवेश करते हैं वे ही केवल 100 वर्ष तक जीवित रहकर जीवन का पूर्ण आनंद लूटते हैं। कच्ची कलियां तोड़ने से पुष्पों की महक मारी जाती है, उनमें सुगंधी नहीं मिल सकती। कच्चे फल रसहीन कसैले और रोगकारी होते हैं। कच्चा भोजन पेट में अनेक रोग पैदा करता है। वैसे ही कच्चे पन में ब्याह करने और वीर्य को नष्ट करने से अर्थात अपक वीर्यपात से नपुंसकता दुर्बलता क्षय प्रमेय अति भीषण रोग उत्पन्न होते हैं, जो उस व्यक्ति को अकाल ही में मृत्यु की गोद में पहुंचाने में पूर्ण सहायक बनते हैं। कच्चा बीज कोई भी किसान खेत में नहीं बो सकता, क्योंकि उनमें खेतों का और बीज वाले मल्ली दोनों का नाश होता है। किसान लोग खेत में बोने वाले बीज को प्राण के तुल संभाल कर रखते हैं। यदि कभी भूखे भी रहना पड़े तो भी कुछ परवाह नहीं करते, परंतु उस बीज में ऋतु काल फसल तक हाथ नहीं लगाते। वैसे ही मनुष्य को भी अपने बीज रूपी बीज को 25 वर्ष तक पूरे तौर पर संभालना चाहिए और मैथुन से सर्वथा बचा रहना चाहिए। जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये ध्यान में रखो। कच्चे पुट्टों में बा कच्चे काठ में कौन जल्दी लग जाता है और पक्के में बिल्कुल नहीं लगता। वैसे ही बचपन में बीज को नष्ट करने वाले जब काम में कोई रोग फैलता है तब सबसे पहले काल के शिकार बनते हैं। वैसे ही 25 वर्ष वाले ब्रह्मचारी शिकार नहीं बनते। यथार्थ में ब्रह्मचर्य ही जीवन है और बीज नाश ही मृत्यु है। पट्टी में कम पका हुआ कड़ा यानी सेवर कड़ा पानी के संयोग से बहुत जल्दी टूट जाता है, परंतु पक्का नहीं टूटता। वैसे ही कच्चे बीज का पुरुष स्त्री संयोग से अथवा अनुचित बीज पात से जल्दी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। प्रकृति के इन 8 परमाणु से अपने अब पदी पंक्ति समझ लिया हुआ कि बाल व्या प्रत्यक्षी काल व्या है, विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्, अर्थात सच्चा वही विद्यार्थी है जो ब्रह्मचारी है। यही किसी बात में असफल नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि प्रतिज्ञा विचार शक्ति स्मरण शक्ति आदि सभी शक्तियां तीव्र होती है। वीर्य प्रष्ट विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति में पूर्ण असफल सिद्ध होता है। हाय, जिस देश में विद्यार्थी अवस्था में ही बचपन ही में ब्रह्मचर्य का नाश किया जाता है, लड़के को तैरना सिखाने के पहले ही जो माता पिता उस बेचारे के गले में स्त्री रूपी पत्थर बांध कर उसे दुष्टर संसार सागर में टकेले देते हैं, उस देश की उन्नति कैसे हो सकती है। कन्या जश्यति वृद्धाये नीचाये धनलिप्स्या कुरूपा कुशा कुशीलाये सा प्रेत जायते नरा। जो श्री भगवान स्कंद कहते हैं, जो पुरुष धन अथवा दहेज की लालच से अपनी अबोध कन्या किसी वृद्ध को खूसट बूढ़े नीच को दुराचारी व्यभिचारी को कुरूप को अर्थात अंधे लंगड़े लूले रोगी कुबड़े कोड़ी अपाहज इन में से किसी को अथवा दुर्गुण दुर्व्यसनी की यदि ब्याह दे तो वह मरने के बाद नीच पसाज जोनी में बार बार जन्म लेता है और अपने नीच कर्मों के फल भोगता है। बाल ब्याह तथा वृद्ध ब्याह आदि दुष्ट ब्याहों को परमाणु को प्रथाएं उठा देने ही से देश में ब्रह्मचारी बालक बालिकाएं उत्पन्न हो सकती हैं और उनकी बागडोर एकमात्र माता पिताओं ही के हाथ में है। अतएव हे माता पिताओ, अब विवेक से काम लो, लकीर के फकीर मत बनो। धर्म तथा प्रकृति के निजमानुसार चलकर पूर्ण के भागी बनो और कुल तथा देश का उद्धार करो। वीरी का प्रचंड प्रताप। समुन्दर तरणो जदवत अपाओ नौ पर कीर्तिता। संसार तरणो तदवत ब्रह्मचर्य पर कीर्तम पर कीर्तितम। जैसे समुन्दर के पार करने के लिए नौका ही श्रेष्ठ साधन है, वैसे ही इस भवसागर से पार करन पार जाने के लिए अर्थात सब दुखों से मुक्त होने के लिए ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट साधन है। क्योंकि ब्रह्मचारी न कांचन आर्तमाश्यति अर्थात ब्रह्मचर्य ही से पूर्ण सुखों की उत्पत्ति है। ऐसी श्रुति है संपूर्ण विश्व के प्राण मात्र में जो कुछ जीवन कला दिखलाई देती है वह सब ब्रह्मचर्य ही का प्रताप है। जीवन कला में सौंदर्य तेज आनंद उत्साह सामर्थ असामान्यता मोहकता अर्थात आकर्षण अनकर्षणत्व व सजीवत्व आदि अनेकानेक उच्च बातों का समावेश होता है। जैसे हाथी के पैर में सभी जीवों के पैर समाते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मचर्य ही सब कुछ ब्रह्मचर्य ही में सब कुछ आ जाता है। एक है साधे सब सदे, ऐसा शक्ति स्पन साधन यदि विश्व में कोई है तो वह एकमात्र ब्रह्मचर्य ही है। अतः प्रयत्न पूर्वक एकमात्र ब्रह्मचर्य ही को संभालो, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शक्तियों का खजाना है। जो ब्रह्मचारी है उसमें दैवी तेज कूट कूट कर परा रहता है। आपकी आंखों में जो इतनी ज्योति है वह किसका प्रभाव है? गाल पर गुलाबी छटा, मुख पर कमनीयता, छाती में अकड़, चाल में फौजी ढंग आदि, यह किसका प्रताप है? क्लास में प्रथम नंबर रहना, खेल में अग्रगण रहना, कुश्ती में किसी से ना हारना, बड़े भारी बोझ को सहज ही उठा लेना, हाथ में दिया हुआ काम पूरा करना, एक शब्द ही से दूसरे को वश में कर लेना, बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होते ही अपनी सुरीली तथा प्रभावशाली आवाज से बड़े बड़े विद्वानों की अच्छी अच्छी युक्तियां अपनी वाक्धारा के प्रवाह में बहा देना, अत्यंत निर्भयता साहस तथा दृढ़ निश्चय का होना, यह सब किसका प्रताप है? निश्चय जानिए यह सब केवल ब्रह्मचर्य ही का अद्भुत प्रताप है। कुमार अवस्था में संभल कर चलने के ही ये सब चमत्कार हैं। ये तपस्यंत कुमारा ब्रह्मचारिण विद्या वेद व्रत ब्रेद व्रतहा ब्रेद व्रत स्नात दुर्गण अपि तरंती ते, जो कुमार ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी ताप के तपस्वी हैं और जिन्होंने सोविद्या वेद से अपने को पवित्र बना लिया है, वे ही केवल अद्भुत और कठिन से कठिन कर्म को कर सकते हैं और यह दुष्टर संसार से तर सकते हैं। ब्रह्मचारी पुरुष सर्वत्र दिग्विजयी होते हैं। ब्रह्मचर्य परंतप, ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। उन्हें कभी अपजस नहीं मिलता। संपूर्ण अपजस का मूल एकमात्र वीर्यहीनता है। वीर मनु का नाश क्यों हुआ? बैसंवर में जाने के पहले भारतवंश विस्तार का बीज आरोपण करके गया। पृथ्वीराज क्यों पकड़ा व मारा गया? कहते हैं कि युद्ध में जाते समय कमर उसकी स्त्री ने कस दी थी। जो वीर को नष्ट करता है वह हर जगह नष्ट किया जाता है और जो वीर को धारण करता है वही सब जगह विजयी होता है। सच्चा ब्रह्मचारी काल का भी काल होता है। दुश्मन भी उनके सामने कंतिहीन पड़ जाते हैं। आत्मक तेज, जिसको अंग्रेजी में पर्सनल मैग्नेटिज्म अथवा तेजोबल यानी पर्सनल ओरा कहते हैं, ब्रह्मचारी में कूट कूट कर परा रहता है, जिसके प्रताप से लोग उस पर अनायास लटू हो जाते हैं। वह जो कुछ कहता है वही प्रिय व सत मालूम देने लगता है और सबके चित्त में उसके लिए पूज भाव पैदा होता है। एक धनी अच्छे कपड़े पहनता है, चेहरा भी उसका गोरा होता है, पर उसकी तरफ देखते ही हमारा कुछ अपराध न करने पर भी हम में एकाएक उसके लिए तिरस्कार बुद्धि जागृत होती है। इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण उसकी वीरहीनता ही है। दूसरा, किसी गरीब का नवजुवक सतेज बालक होता है, परंतु उसे देखते ही मनुष्य के चित्त में उसके लिए एकाएक स्नेह भाव जागृत होता है। वह किसका प्रताप है? जैसा वीर पुष्टता व ब्रह्मचर्य का दिव्य प्रताप है। सारंश, शुक्र संचय ही स्नेह का एक मात्र आदि कारण है। यह बात अक्षर अक्षर सत्य है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो अमेरिका की विराट विद्युत सभा में खड़े हुए तब वहां के समस्त विद्वानों को उन्होंने केवल 5 ही मिनट में कठपुतलियां की तरह मुग्ध कर लिया। उनकी अच्छी अच्छी युक्तियों को अपनी वाक शक्ति के प्रवाह में क्षण में ही बहा दिया और लोगों को अपना पूर्ण बासथाई भक्त बना दिया। यह किसका प्रताप है? यह केवल ब्रह्म तेज ही का प्रताप है, जो कि एकमात्र ब्रह्मचर्य ही से प्राप्त हो सकता है और अन्य किसी से नहीं। एक विद्वान आता है, 3 घंटे व्याख्यान देता है और लोगों को अपने बाक सामर्थ्य से हला छोड़ता है, पर लोग घर पर जाते ही वह सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसा वीरहीनता की बदौलत। दूसरा, एक ऐसा ही मामूली मनुष्य आता है, 2-4 ही शब्द सुनाता है, परंतु वे ही 2-4 शब्द मनुष्य आकर दम तक नहीं भूलता। वह किसका प्रताप है? वह सब आत्म तेज का अर्थात वीर्यवता का प्रताप है। वीर्य प्रष्ट पुरुष कभी आत्मबली नहीं हो सकता और ना वह स्थाई प्रभाव ही डाल सकता है। चाहे वह फिर जटा बढ़ाने हो, चाहे मुंड मड़ाए हो, अथवा चारों वेदों का ज्ञाता हो, कहा है एक 31 चतुरा वेदा ब्रह्मचर्यं तथैकता। एक तरफ चारों वेदों का पूर्ण और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का पूर्ण, दोनों में ब्रह्मचर्य ही का पूर्ण विशेष है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही भीष्म पितामह के सामने उनके महान प्रतापी गुरु परशुराम जी को हार माननी पड़ी। इतना ही नहीं, किंतु श्री कृष्ण भगवान को भी उनके सामने आना परण भूल कर आखिर में चुक ही जाना पड़ा। आह कहते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं, श्री हनुमान जी ने एक ही गुंसे से इतने बड़े भारी प्रतापी रावण को बेहोश कर दिया और उसके मुख से खून बहाया। एक ही उड़ान से सुंदर लंगना, बड़े बड़े पर्वतों का सहज ही में उठा ले जाना और काल के मुंह में थप्पड़ लगाना, यह किसका समर्थ है? यह सब अखंड ब्रह्मचर्य का ही समर्थ है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य में निसंशय अद्वितीय ब्रह्म तेज प्रकट होता है, जिसके कारण वह बड़े बड़े अद्भुत काम बड़ी आसानी से कर दिखाता है। आज तक जो कुछ बड़े बड़े धार्मिक व सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, वे सब ब्रह्मचारियों ही के द्वारा अथवा ब्रह्मचर्य के ही बल कर हुए हैं। वीरहीनता के कारण आज हम लोगों को अपने पूर्वजों की अद्भुत शक्तियों में भी संदेह हो रहा है। क्यों ना हो, हमारे ही 100 वर्ष तक जीवित रहने का यदि हमें संदेह है, तो फिर ईश्वरीय शक्तियों के लिए संदेह होना स्वाभाविक बात है। पुष्पक भगवान के लिए भी तो हमें पहले संदेह ही था, परंतु आज जब प्रत्यक्ष भगवानों को देख रहे हैं, तब चुप मारकर सिर हिलाकर कहने लगे हैं कि होगा भाई, ये लोग जंतर से चलाते हैं, परंतु हमारे पूर्वज ब्रह्मनों को जंतर से ही चलाते रहे होंगे। श्री भीष्म पितामह, श्री परशुराम जी और जजाति पुत्र, उन्हों अपने पिताओं के लिए और अनेक ऋषि कुमारों ने केवल परोपकार दूसरे के लिए ब्रह्मचर्य धारण किया, परंतु आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम खुद अपने ही उपकार के लिए ब्रह्मचर्य को पाल नहीं सकते। भला इससे बढ़कर हमारे आत्मपतन का और स्पष्ट बा पुष्ट प्रमाण दूसरा कौन सा हो सकता है? निर्वीर्य पुरुष को सभी बातें असंभव सी जान पड़ती है। फलतः ब्रह्मचारी पुरुष के लिए संसार में तो क्या त्रिपवन में भी कोई बात असंभव ना बा अप्राप्त नहीं। श्री भगवान शंकर कहते हैं, सिद्धे बिंदो महायत्ने किंगना सिद्धयति भूतले जस्या प्रसादात महिमा समाप एतादृशो भवेत। अर्थात महान परीक्षण पूर्वक बिंदु को साधने वाले अखंड ब्रह्मचर्य के लिए त्रिपवन में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो असंभव वा असाध हो। ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य मेरे ही तुल अर्थात ईश्वर तुल ही सर्वत्र वंदनीय व पूजनीय बन जाता है। बस हो गया, इसे बढ़कर ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करना हमारी शक्ति से बाहर है। ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है। केवल सच्चे ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा का अनुभव कर सकते हैं। अतः भ्रातृ भगिनी मित्रगण, तुम भी ब्रह्मचर्य का शक्ति भर पालन कर, उसकी प्रचंड शक्ति की दिव्य छटा अनुभूत करो। जब भी तुम्हारे हाथ में आज तक बहुत कुछ अपराध हुए हैं तो भी कुछ हर्ज नहीं, उन्हें भूल जाओ। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठान बीज लागा जय कपिल महर्षि का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार आज भी हम फिर से ब्रह्मचारी बन सकते हैं। और तन मन से बीज धारण कर अपना तथा देश का पुनर्द्वार कर सकते हैं, पुनर्उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि बीज धारण ब्रह्मचर्यम, बीज धारण का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में सच्ची शक्ति है और शक्ति में ही सच्ची मुक्ति भी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सच्चे दिल से मेरी शरण आने से बड़े पाप आत्मा भी पुणात्मा व महात्मा हो गए हैं। तुम भी मेरी शरण आओ, मुझे सर्वत्र व्याप्त मान देखो, प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखो, स्त्री मात्र में मेरा ही रूप देखो, मैं तुम्हारा अवश्य उद्धार करूंगा। अतः भगवान की इस आज्ञा अनुसार यदि 6 ही मास तक ब्रह्मचर्य का मन क्रम वचन से सच्चा पालन करके देखो तो अपना रंग बहुत बदला हुआ हमें प्रत्यक्ष जान पड़ेगा। चेहरे की पांडुरता नष्ट हो, चेहरा तेजस्वी बन जाएगा, आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी, शरीर की दशा बहुत कुछ सुधर जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाने से हम आत्म उन्नति के पथ में भी अग्रसर होंगे और चारों ओर अपनी कीर्ति सुगंधी फैलाकर सभी के मुख से तन तन कहलाएंगे। भजन बार बार समझाए रहा हूँ, मान रे मान ले रे मन मेरी कही को, ये कहें ब्रह्म पूर्ण सब जग में, छोड़ कपट की गांठ गही को, दुख सुख की दुख सुख जो बीती सो बीती, याद न कर बर्बाद गही को, जानकी दास सुमर श्री रघुवर गई सो गई अब राख रही को। अज्ञान का फल मृत्यु है। स्वयं कर्म क्रोति आत्मा, स्वयं तत्फल मिश्नुते, स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्मात विमुच्यते। मनुष्य अपने ही कर्म करता है, अपने ही उनके भले बुरे फल भोगता है, अपने ही कर्म से इस कराल संसार में चक्कर लगाता है और अपने ही कर्म से इन सब से मुक्त हो भी होता है। श्री मनुज महाराज कहते हैं, किया हुआ कुकर्म व अधर्म कभी निष्फल नहीं होता, चाहे जंगल में भाग जाए, पर्वत में छिप जाए, आकाश में उड़ जाए, चाहे पाताल में घुस जाए, कहीं भी पाप में कर्मों से छुटकारा नहीं होता। पाप का भूत सिर पर सदा सवार ही रहता है। अधर्म का फल जल्दी नहीं मिलता, केवल इसी कारण अज्ञानी वो अंध लोग पाप से नहीं डरते, परंतु निश्चय जानो कि वे पाप चरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के जड़ों को बराबर काटता ही चला जा रहा है। यदि बालक जानते होते कि उनके ही किए हुए कर्मों के कारण उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है, उनके कर्मों के फल उन्हीं को भोगने पड़ते हैं, उस समय दूसरा कोई भी साथी नहीं होता। यदि वे जानते होते कि काम से मनुष्य बेकाम बन जाता है और अकाल ही में मर जाता है, तो वे क्या कभी कुकर्मों में प्रवृत्त होते? कदाप नहीं। अज्ञान ही से मनुष्य कुकर्मों में प्रवृत्त होता है और अपना नाश कर लेता है, इनमें कोई संदेह नहीं है कि अज्ञान ही से मनुष्य गड़े में जा गिरता है। जानबूझकर गड़े में कूद पड़ने वाले को जा तो परोपकारी महापुरुष समझना चाहिए, जा स्वार्थंद मोहंद पतत पुरुष समझना चाहिए। भला ऐसे आत्मघाती की कौन आत्मघाती को कौन तार सकता है, यदि कितना ही बढ़िया भगवान तुम्हारे सामने रखा जाए और तुम्हें यह मालूम हो जाए कि इनमें विष मिलाया हुआ मिला हुआ है, तो क्या कभी तुम उस भगवान को खाएंगे? हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम उस भगवान को कदापि नहीं खाओगे, बल्कि जहां से तत्काल उठकर चले जाएंगे। वैसे ही सच्चा आत्म उद्धारक स्त्रियों के और अनमोहक पदार्थों के बाहरी रंग रूप में कदापि नहीं भूलता। यह फौरन वहां से हट जाता है और अपने को बचा लेता है। अज्ञानी बामोहंद पुरुष ही उनमें फंसते हैं और दीप लुब्ध पतंग की भांति जल के खाक हो जाते हैं। अज्ञान ही मृत्यु है और ज्ञान ही जीवन है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन। भगवान कहते ज्ञान अग्नि से मनुष्यों के संपूर्ण पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं और शुभ कर्मों से उनका उद्धार होता है। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने बालक बालिकाओं को, उनके माता पिताओं को और संपूर्ण गुरुजनों को यथेष्ट रूप से सचेत कर दिया है। अब वे इस ग्रंथ के को पढ़ने पर, ऐसी विचारधारा को सुनने पर कदापि नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं था। अब आप लोगों को वीर रक्षा के अनूठे व स्वय अनुभूत नियम बताए जाते हैं, जिसके द्वारा आप विषयों से निश्चय पूर्वक बच सकते हैं और ब्रह्मचर्य की परिपांत रक्षा कर सकते हैं। इन नियमों के प्रताप से हम सुपत्नीक होते हुए भी अखंड ब्रह्मचर्य का अपंग पालन कर रहे हैं। फिर जिनके स्त्री नहीं है वे अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ होंगे, इससे संदेह ही क्या है? यदि एक पुरुष बालका व बालक इन नियमों के अनुसार चलकर ब्रह्मचर्य द्वारा अपना उद्धार कर ले, तो लेखक या वक्ता उस व्यक्ति का बहुत उपकृत होगा और अपने को धन समझेगा। भगवान आपको उस बुद्धि का आत्मक बल प्रदान करे। वीर रक्षा के अनूठे नियम, पवित्र संकल्प, वक्तव्य, संकल्प उन विचारों का नाम है जिनमें पूर्ण विश्वास पर आओ। परमात्मा विश्वास में होता है, यह बात हमें कभी न भूलना चाहिए। यदि सोते समय मनुष्य ऐसा सोचकर सोवे कि आज मैं 4 बजे उठूंगा, तो निश्चय जानो कि उस मनुष्य की आंखें 4 बजे अवश्य खुल जाती है। आलस वश यदि वह फिर से सो जाए तो दूसरी बात है। समान विचारों में यदि यह शक्ति है तो श्रद्धा या दृश्य भावपूर्ण विचारों में कितनी प्रचंड शक्ति होती होगी, इसका आप ही अनुमान कर सकते हैं। एक मनुष्य गर्मी के दिनों में गांव से अत्यंत व्याकुल हो गया था। दूरी पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वैसे वह भागता हुआ वहां गया। पेड़ की शीतल छाया से उसे बहुत ही सुख उपजा। वहां सा कल वृक्ष मनुष्य ने सोचा, जहां पीने के लिए ठंडा जल होता तो क्या ही आनंद होता। ऐसा सोचते ही उसके बगल में सुंदर शीतल झरना निर्मित हुआ। उस पर दृष्टि जाते ही वह बोल उठा, अरे वाह, जहां से झरना मौजूद है, थोड़ा पानी पीकर आह क्या ही ठंडा और मीठा जल है। यदि इस समय पास में कुछ मेवा हो तो क्या ही आनंद हो। यह सोचते ही वहां पर तत्काल मेवा से भरा हुआ एक सुंदर पात्र उपस्थित हुआ। उसे देखते ही उसने सोचा, हे यहाँ क्या चमत्कार है, मालूम होता है यहाँ पर कुछ शैतान का खेल है। ऐसा सोचते ही उसे वहां पर इधर उधर चारों ओर नाचते कूदने की डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। उसने सोचा, सचमुच जहां पर शमशान ही मालूम होता है, कहीं ऐसा न हो कि कोई शैतान सामने खड़ा आकर खड़ा हो जाए। ऐसी शंका करते ही एक महान विकराल भूत उनके सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी ओर गुर्राते हुए देखने लगा। मनुष्य ने डर के मारे आंखें मूंद ली और मन में कहने लगा, अरे बाप, यह मुझे खा तो नहीं जाएगा। ज्यों ही उसने ऐसा सोचा, त्यों ही उस पिशाच ने उनको मुंह में डालकर तत्काल खा लिया। फिर यही दशा अच्छे या बुरे विचार करने वालों की भी हुआ करती है। कल वृक्ष वहां है यह तो हम नहीं जान सकते, परंतु ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ परमात्मा न हो। यह कटकट में और अणु परमाणु में भरा हुआ है और ईश्वर से बढ़कर दाता कल वृक्ष दूसरा कोई भी नहीं हो सकता, और आप हम सब उसी छाया में बैठे हुए हैं। तब ऐसे सर्वत्र व्याप्यमान कल वृक्ष के सामने मनुष्य की संपूर्ण भली बुरी कामनाएं सिद्ध होगी, इसमें संदेह ही क्या है। अच्छे विचारों से उसे अवश्य ही मेवा मिलेगा और बुरे विचारों से व्यापसाचों द्वारा अवश्य ही खाया जाएगा। सारांश, मनुष्य अपने ही विचारों से नष्ट और श्रेष्ठ बनता है, इसमें कोई भी शक नहीं। चाहे कितने ही गुप्त रूप से हृदय के भीतर हम कोई कल्पना फिर कर्म तो दूर रहा करते हों, तो उसे भी परमात्मा देखता है और उसके भले बुरे फल हमें बराबर देता है। मां, एक मनुष्यान कारण बंद मोक्ष भगवान का जय अटल सिद्धांत है। मन ही मनुष्य को गुलाम बनाता है, मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नरक में बिठा देता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे ही हाथ में दे रखी है, उसे सीधी या टेढ़ी घुमाना हमारे हाथ में है। मनुष्य की सुगति या बाद दुर्गति उसके भले बुरे संस्कारों विचारों पर ही सर्वथा निर्भर है। पाप में विचारों से वह पापात्मा और पुण्य विचारों से वह निसंदेह पुण्यात्मा बन जाता है। उच्च व पवित्र विचारों से कितना ही पतित मनुष्य क्यों न हो, वह भी उच्च पवित्र आत्मा बन सकता है, परंतु भगवान कहते हैं उनकी बुद्धि का निश्चय पूरा होना चाहिए, अर्थात ऐसा पुरुष फिर पाप कर्म नहीं कर सकता। विश्वासो फलदाया दायका, यह भगवान का वचन है। जितना विश्वास अधिक होगा उतना उसका फल भी अधिक होगा। महापुरुषों का विश्वास इतना प्रबल और अनन्य होता है कि वे पानी को घी और बालू को चीनी तक बना सकते हैं। ऐसा ही अनन्य विश्वास हमारा भी होना चाहिए। संशय आत्म बनश्यति, संशयी पुरुष का नाश होता है। अतः निसंदेह भाव से संकल्प करने पर हमारा अवश्य उद्धार होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सब सच पूछिए तो को कल्पना ही शैतान है। अतः जिसको तरना हो उसे चाहिए कि हठपूर्वक बुद्धि को विचारों को त्याग कर सुबुद्धि को धारण करे और आज ही से इसी समय से पवित्र विचारों को शुरू कर दे। निसंदेह अपरमत कल्याण होगा। अतः निंद्रा के पूर्व रोज पाव घंटा वश पवित्र संकल्प किया करो। और इतने सब को स्वप्नों का नाश होकर तुम में एक अद्भुत दैवी शक्ति प्रकट होगी और तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। पुरुष प्रयत्न शीलस्या असाध्यम नास्ति, मनुष्य के उचित प्रयत्न करने पर असाध कुछ भी नहीं। आज बीज बोया और फल कल फल चाहा, ऐसे अधीर मनुष्य को पदार्थ यश नहीं मिलता। यदि जल्दी फल न मिले तो मन में समझो कि पहले के पाप संकल्प अधिक हैं, परंतु वे पूर्ण संकल्पों द्वारा निश्चय ही परास्त होंगे। जब तक हृदय के अपवित्र भाव हट न जाए तब तक हठ पूर्वक प्रबल वेग से पुनः पुनः चेष्टा करो। भगवान कहते हैं तुम्हारी यह चेष्टा कभी निष्फल न होगी, तुम्हारा अवश्य ही उदार होगा। नह कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गश्यति, ध्वनि जैसे वैसे पर ध्वनि, यह भी प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है। यदि हम कुएं में जाकर कहें कि नाश हो तेरा, तो उधर से भी नाश हो तेरा, ऐसा ही जवाब मिलेगा। अतः जिस प्रकार हम भगवान की उत्पत्ति प्रार्थना व संकल्प करेंगे, ठीक वैसे ही भगवान हमें भी कहेंगे। यदि हम कहेंगे कि भगवान आप वीरजवान हो, भगवान हो, तो भगवान भी उल्ट कर हमको कहो, हमको यही कहेंगे कि आप वीरजवान हो, भगवान हो इत्यादि। इस पर भी हमारे धर्मशास्त्रों में तो ईश्वर के स्तोत्र और मंत्र नित पाठ के लिए रखे हैं, उनमें हमारे उद्धार का कितना उच्च हेतु भरा हुआ है। यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि अतः जिस प्रकार हम अपने को बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार से उसकी प्रार्थना निशंग भाव से रोज किया करें, बहुत ही उपकार होगा। तुलसी अपने राम को रीज पजे चह खीज, खेत परे पर जम है उल्टा सुलटा बीज। इसी प्रकार हमारे कायिक वाचिक मानसिक शुभा शुभ कर्मों के फल भी हमें अवश्य ही मिलते हैं। मामूली बीज तो कोई उगता भी नहीं, परंतु कर्म बीज एक भी उगे बिना नहीं रहता, सभी फल रूप होते हैं। अतः प्रातः काल उठते ही प्रथम अत्यंत प्रेम से एक दो चार बढ़िया स्तोत्र व भजन रोज कहो, और फिर अलग पवित्र आसन पर बैठकर अत्यंत दृढ़ विश्वास से नीचे दिए अनुसार पवित्र व उच्च संकल्प किया करो। संकल्प ही कहते कहते तुम में कैसा तेज प्रवेश करता है। संकल्प प्रार्थना। बकर तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। स्वर्गा अप्पो भर्गदा देवी नारायणी नमो स्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन ही गणेश गणजमहिष अर्थात इंद्रिय समूह को हिलाने वाला है। बुद्धि ही सर्वांत व्यापक सर्वंत व्याप्रपत ज्ञान देवी सृष्टि है। आत्मा ही पारगम परमात्मा है और आत्मा की सत्व राज्य तमात्मक त्रिमूर्ति श्री दत्तात्रेय स्वरूप सदगुरु है। अर्थ हे बकरतुंड टेडी सुंड वाले ओंकार, आप विश्वोदर हो, विश्वव्यापी हो, अनंत कोटि सूर्य तुल आपका प्रकाश है, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान मेरे संपूर्ण विघ्न नष्ट करके मेरे संपूर्ण कार्य सदैव सिद्ध करो। संपूर्ण लोगों के हृदय में बुद्धि रूप से सदा विराजमान रहने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाली हे परम दयालु माता देवी नारायणी, तेरे चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप मुझे सदैव सुबुद्धि दो। हे जगद्गुरु, आप ही ब्रह्म विष्णु महेश्वर हो, संपूर्ण जगत के प्रेरक तथा चालक हो। आप ही की आज्ञा से चंद्र सूर्य प्रकाश होते हैं, बाजू बहता है, मेघ बरसता है और संपूर्ण चराचर जीव अपना अपना कार्य सो यंत्रत कर रहे हैं। आप साक्षात पारम परमेश्वर हो, अनाथों के नाथ हो, ठोकर लगने पर भी संभालने वाली भूमि की तरह, अनंत अपराध हाथ से होने पर भी, महान अपराधी होने पर भी हमें संभालने वाले हमारे एकमात्र आधार आप ही हो। हम आप ही की शरण में, आप शरणागत बत्सल हो। आप हमें सच्चे सन्मार्ग से कभी विचलित न होने दो। आपको मेरा विनम्र बार बारंबार प्रणाम। त्राहे माम त्राहे माम त्राहे माम प्रेरक संकल्प। ईश्वर सर्व व्यापमान है, ईश्वर मेरे भीतर है, मैं ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। ओम ईश्वर सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है, ईश्वर सच्चिदानंद है, ईश्वर मेरे भीतर है, मैं भी सच्चिदानंद आनंद स्वरूप हूँ। ओम ईश्वर पूर्ण निरपय निसंग बा निष्पाप है, मैं भी पूर्ण निरपय निसंग निष्पाप हूँ। ईश्वर परम वीर्यमान पूर्ण भगवान बा असीम समर्थवान है, मेरा भी स्वरूप वही है, परम वीर्यवान पूर्ण भगवान बा असीम समर्थवान। ईश्वर पूर्ण निष्काम निर्विशेष निर्वकारी है, ईश्वर मुझ में है, मैं भी पूर्ण निष्काम निर्विकारी हूँ। आवश्यक सूचना, मैं शब्द ईश्वर बोधक है, ना के शरीर बोधक, क्योंकि जय साढ़े तीन हाथ का अवमानी चोला मृत्यु के बाद ज्यों का त्यों पड़ा रहने पर भी मैं नहीं हो सकता, अतः मैं सर्वव्यापी केवल ईश्वर बोधक ही समझना चाहिए, ना कि देह का बोधक। देव मान से अधापतन होता है, यह बात सदा ध्यान में रखना चाहिए। मैं ईश्वर हूँ, मेरी शक्ति अनंत है, मैं जो चाहूंगा सो कर सकता हूँ। मैं पुरुष हूँ, प्रकृति मेरी स्त्री है, अतः प्रकृति को मेरी आज्ञा अक्षर अक्षर माननी होगी। प्रकृति देवी, मन तथा इंद्रियों को विषय का स्मरण न करने दो, उन्हें विषय से खूब संभालो, हरगिज उनका नाश न होने दो, उन्हें विवेक से शांत बासुखी करो, देखो इस आज्ञा का ठीक ठीक पालन करो। ओम द्वितीय सूचना, अब नीचे के संकल्प हृदय की ओर देखते हुए करो, मन परमात्मा हृदय में ही बैठे हुए हैं और हम भक्ति भाव से परमात्मा से बातचीत कर रहे हैं। इन संकल्पों से शरीर पर अति अद्भुत ता परिणाम होते हुए दिखाई देंगे, रोगी भी निरोग होंगे, क्रोधी भी शांत होंगे और कामी भी ब्रह्मचारी होंगे। इस निश्चय को पूर्ण सत्य जानो, परंतु दृष्टि पर लगी होनी चाहिए और परमात्मा को हृदयस्थ समझकर उसे संबोधित कर संकल्प करना चाहिए। हे परमात्मन, आप प्रेम स्वरूप शांति स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो, हम दास के नस नस में प्रेम का, शांति का तथा क्षमा का संचार हो रहा है। उनकी सनसनाहट का मैं अनुभव कर रहा हूँ। भगवान आपके पास दुख, रोग, चिंता, प्रीति, दरिद्र कहाँ? आप सदा सर्वदा सुखी, निरोग, निश्चित, निर्भय लक्ष्मीपति हो। सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्य, निर्भयता आदि मुझ में संचार कर रहे हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। पहले से मैं अधिक स्वस्थ हूँ, अधिक निर्भय हूँ, अधिक शांत हूँ, निर्भकारी हूँ। आज रात्रि में स्वप्न दोष नहीं होगा, मैं बहुत जल्द तंदुरुस्त हूँगा। भगवान मुझे संभालो, वीर्य नाश होने से पहले ही मेरी आंखें खोल दो, मुझे जागरूक कर दो। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, मुझे जागृत कर दो। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा क्योंकि मेरे रक्षक प्रभु हैं हूँ। व्यक्तियों अब दिन ब दिन पवित्र हो रही हैं। दृष्टि में प्रत्येक स्त्री के लिए मातृभाव समाया है। कानों में ब्रह्मचारियों का जस गूंज रहा है। मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मेरा उद्धार हो रहा है हूँ। प्रभु मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। अब करना कर कीजिए सोई, जाविद मोर परमहित हुई। त्राहे माम त्राहे माम त्राहे माम। इस प्रकार रोज प्रातः काल, सायंकाल और भोजन के समय ऐसे केवल तीन ही बार यदि विश्वास और दृढ़ता के साथ हम संकल्प करेंगे तो अपार कल्याण होगा। महापुरुष कहते हैं, सत्ता संकल्प ब्रह्म ओ ब्रह्म ब्रह्मोत्पास्ते कल द्रवान्वेषा लोकान ध्रुवान ध्रुव प्रतिष्ठान प्रतिष्ठते। जो इस संकल्प रूपी ब्रह्म की नित प्रति उपासना करता है वह निर्भय होकर इस लोक व परलोक में ईश्वर के तुल पूजनीय बन जाता है और उसका सम्मान होता है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निर्मयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख मा अनुवात्। शुभं भवतु तथास्तु।